प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 22 फरवरी 2017 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों आज के लिए मैंने विषय चुना है पब्लिक अकाउंट कमेटी का, जिसे हिंदी इंग्लिश में हम कहते हैं, हिंदी में हम कहते हैं लोक लेखा समिति। फ्रेंड्स इस समिति का नाम आपने सुना होगा और खासकर इसकी चर्चा तब विशेष रूप से हुई थी जब नोटबंदी लगभग खत्म होने को आ गई थी। यूं कह लीजिए कि दिसंबर के लास्ट में, सेकेंड हाफ में इस समिति की चर्चा होने लगी थी। इस समिति की चर्चा होने के पीछे जो कारण था दोस्तों, वो मुझे लगता है कि आप लोगों को मालूम होगा। खासकर इस बात को लेकर एक बहस छिड़ी थी, अखबारों में भी ये बात आई थी कि जो रिजर्व बैंक है, रिजर्व बैंक अपने आप में पूरी तरह से स्वतंत्र होता है और नोटबंदी यानी कि विमुद्रीकरण के बारे में जो फैसला लेने का अधिकार तो नहीं, लेकिन जो रिकमेंडेशन का जो अधिकार है वो रिजर्व बैंक की अपनी ही एक कमेटी के द्वारा किया जाता है, फिर सरकार उस पर निर्णय लेती है। लेकिन सरकार ने इस प्रक्रिया का उल्लंघन किया है और उसने सीधे सीधे अचानक रिजर्व बैंक को यह आदेश दिया, कह लीजिए एक तरीके से, कि वह नोटबंदी लागू करे। उसका नतीजा यह हुआ कि अचानक नोटबंदी लागू किया गया और आप देख रहे हैं कि पूरे देश में किस तरीके से एकदम चहल पहल उठा पटक शुरू हो गई। तो दोस्तों जो समिति है मूलतः उस समय एक्टिव हुई थी और इस लोक लेखा समिति ने फिर ये बात कही थी कि वह अपने सामने जो रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं उर्जित पटेल, उनको बुलाएगा और उनसे इसके बारे में पूछताछ करेगा कि किस तरीके से नोटबंदी लागू किया गया, उसकी प्रक्रिया क्या रही है। इसी के साथ ही साथ दरअसल अगर बात यहीं तक सीमित रहती तो शायद पब्लिक अकाउंट कमेटी उतनी चर्चा में नहीं आती, क्योंकि ये तो उसके काम के अंतर्गत आता है, वो ऐसा कर सकती है। और हाँ ये जरूर था कि चूंकि मामला विमुद्रीकरण का था और विमुद्रीकरण एक बहुत बड़ी बहस का विषय पूरे देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के भी बहुत से देशों में भारत के विमुद्रीकरण के निर्णय के बारे में बातचीत होने लगी थी, तब निश्चित रूप से थोड़ा सा पब्लिक अकाउंट कमेटी ज्यादा चर्चा में आ गई थी। लेकिन मित्रों सिविल सर्विस के लिए ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, मैंने क्यों इस टॉपिक को चुना है, यहां मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा इस बारे में। आगे चलकर कुछ ही दिनों के बाद जब पब्लिक अकाउंट कमेटी ने ये घोषणा की कि वो गवर्नर को बुलाएंगे, रिजर्व बैंक के गवर्नर को, तो उसके कुछ दिनों के बाद ही, उसके आसपास ही, उन्होंने फिर एक वक्तव्य दिया और ये कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो विमुद्रीकरण के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए प्रधानमंत्री को भी बुला सकते हैं। डेफिनेटली जब प्रधानमंत्री को बुलाने की बात आई तब यूं कह लीजिए कि देश ज्यादा सतर्क हुआ। और इस पर फिर जो भी राजनयिक हैं, संविधान विशेषज्ञ हैं, वो अलग अलग तरीके से बातचीत करने लगे। तो दोस्तों यही कारण है कि मैंने इस पब्लिक अकाउंट कमेटी के विषय को चुना है स्पेशली। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सीधे सीधे पब्लिक अकाउंट कमेटी पर तो प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। सन 2016 का पेपर उठा करके देखिए तो उसमें कैग पर क्वेश्चन पूछा गया है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल पर पूछा गया है, लेकिन जिस तरीके से पूछा गया है वो बिल्कुल डिफरेंट है। मित्रों हालांकि यह प्रश्न कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल पर है, लेकिन मैं आपको यहां इसे पढ़कर सुनाना चाहूंगा कि क्या प्रश्न पूछा गया था। यह मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको इस बात का थोड़ा सा अंदाजा मिल सके कि बाय द वे यदि लोक लेखा समिति पर प्रश्न पूछ ही लिया गया तो वह किस तरीके का प्रश्न होगा, किस एंगल से पूछा जा सकता है। देखिए सीधे सीधे मैं तो आपको हर बार याद दिला देता हूं कि सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाने की संभावना तो नहीं के बराबर है, तो फिर किस तरह से पूछे जाने की संभावना है। तो मुझे लगता है कि शायद अगर हम पिछले साल जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल पर जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको आधार बनाकर कुछ फैसला कर सके, तो आइए पहले उसे हम देखते हैं कि वो क्या था, क्या प्रश्न था। दोस्तों प्रश्न है कि संघ और राज्यों के लेखाओं के संबंध में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की शक्तियों का प्रयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 149 से व्युत्पन्न है। चर्चा कीजिए कि क्या सरकार की नीति कार्यान्वयन की लेखा परीक्षा करना अपने स्वयं इन ब्रैकेट है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की अधिकारिता का अतिक्रमण करना होगा या कि नहीं। 200 शब्दों का है फ्रेंड्स, 12.5 नंबर का क्वेश्चन है। थोड़ा सा इंग्लिश में भी पढ़ देता हूं क्योंकि मैंने महसूस किया है कि हिंदी में जो ट्रांसलेशन होता है वो थोड़ा सा टफ होता है, शायद इंग्लिश से वो कुछ आसान हो जाए। Exercise of CAG's powers in relation to the account of the Union and the States is derived from Article 149 of the Indian Constitution. Discuss whether audit of the government's policy implementation could amount to overstepping its own (CAG) jurisdiction. अब आप देखिए कि इसमें पहला तो सिंपल सा स्टेटमेंट है, उसका कोई मतलब नहीं है। वो बता रहे हैं कि संविधान के अनुच्छेद 149 में उसकी शक्तियों का उल्लेख है, तो बात खत्म हो गई। लेकिन जो प्रश्न है, प्रश्न ये है कि ठीक है कि लेकिन वो तो सरकार के जो अकाउंट है उसके खर्च का जो विवरण होता है उसकी तो जांच परख सीएजी करता ही है, लेकिन क्या वह सरकार की जो नीति है उसका इम्प्लीमेंटेशन है, जिस तरीके से सरकार की पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन किया गया, लागू किया गया, क्या उसकी भी अकाउंटिंग होनी चाहिए? अब आप देख, क्या उसकी भी अकाउंटिंग होनी चाहिए? और अगर वो ऐसा करता है तो क्या ऐसा करना उसके अपने अधिकार का अतिक्रमण करना नहीं होगा? यहां दोस्तों इसे आप बिल्कुल ठीक उसी के समानांतर समझ सकते हैं जैसा कि हम न्यायालय की सक्रियता की बात करते हैं, ओवरस्टेपिंग की बात करते हैं, कि किस तरह से न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्रों का अतिक्रमण करके अब कार्यपालिका के क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है। यहां भी लगभग लगभग उसी तरह की बात सीएजी के बारे में कही जा रही है। राइट फ्रेंड्स, तो अब सवाल यह है कि अगर हम इसको आधार बनाते हैं तो जो पीएसी है, पब्लिक अकाउंट कमेटी है, उससे किस तरीके का प्रश्न बन सकता है? तो मित्रों, एक प्रश्न तो सीधे सीधे वही है जिसकी चर्चा मैं अभी कर ही रहा था कि वो प्रधानमंत्री को बुला सकते हैं, तो क्या उसके अधिकारों का अतिक्रमण हो सकता है? दूसरा प्रश्न कुछ ऐसा भी बन सकता है कि जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है वो कितना शक्तिशाली है, उसकी क्या उपयोगिता है, उसके क्या सच में इतने अधिकार हैं कि देश पर उसके कोई सकारात्मक प्रभाव पड़ते भी हैं या नहीं पड़ते हैं, या ऐसे ही हमने एक ब्रिटिशकालीन सिस्टम को अभी तक बनाए रखा है, खत्म कर दिया जाना चाहिए, कोई इसका विशेष रोल नहीं है, इस तरह का भी एक प्रश्न हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये तो पब्लिक अकाउंट कमेटी की संभावना पर मैंने थोड़ा सा आप लोगों से बात की है कि आपकी तैयारी का कोण, दिशा, शेड, जो भी आप कह लीजिए, कैसा होना चाहिए। अब मैं थोड़ी सी बात आपसे करना चाहूंगा कि बेसिकली जो पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, ये पार्लियामेंट्री कमेटी होती क्या है? एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट इसके बारे में ये है फ्रेंड्स कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जगह जगह इन समितियों का उल्लेख आया, इसके संदर्भ आए हैं, लेकिन इन समितियों का गठन कैसे किया जाएगा, इनके पास क्या क्या कार्य और अधिकार होंगे, कितने समय के लिए यानी कि इनका कार्यकाल क्या होगा, इसके बारे में कहीं किसी तरह का उल्लेख नहीं मिलता। लेकिन समिति होंगी इसका उल्लेख मिलता है, तो बट नेचुरल है कि फिर समितियां बनाई जाएंगी। तो अब कैसे बनाई जाएं? सवाल यह है कि संविधान में तो उसके बारे में कोई दिशा निर्देश है नहीं, तो हमारे यहां क्या किया गया है, ये आपको मालूम होना चाहिए, प्री की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, हमारे यहां किया ये गया है कि आपको मालूम है कि लोकसभा का अपना एक बिजनेस सिस्टम होता है, उनके काम करने के लिए अपने नियम बनाए हुए हैं, और ठीक इसी तरीके से राज्यसभा के भी अपने नियम हैं। तो सीधी सी बात है कि जो राज्यसभा और लोकसभा के नियम हैं, उन्हीं नियमों के अनुसार आप कह लीजिए उसी के अंतर्गत समितियों का गठन कर दिया जाता है। और सही भी है, क्योंकि जो समिति है उसमें केवल दो ही सदस्य होते हैं, लोकसभा के और राज्यसभा के, और नाम भी संसदीय समितियां ही है, पार्लियामेंट्री कमेटी। तो ठीक है, पार्लियामेंट के उस नियम के तहत जिससे लोकसभा और राज्यसभा कंडक्ट होती हैं, उसके तहत ये इन समितियों का गठन कर दिया गया। तो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि इनका गठन कैसे होता है। अब फ्रेंड्स, ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी है, ये पार्लियामेंट्री कमेटी कहेंगे आप किसे? देखिए, और भी बहुत सी समितियां होती हैं, लेकिन पार्लियामेंट्री कमेटी की अपनी कुछ विशेषताएं, या कह लीजिए कि उसका कुछ करैक्टर है। सबसे पहला करैक्टर तो इसका ये है फ्रेंड्स, कि इस कमेटी की नियुक्ति, नामांकन, निर्वाचन, जो भी कह लीजिए, चाहे नियुक्ति करते हो, चाहे उनका नामांकन होता हो, नॉमिनेशन होता हो, चाहे बकायदे उनका विद इन द पार्लियामेंट निर्वाचन होता हो, वो जो किया जाता है वह लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति, यानी कि हेड ऑफ द हाउस ऑफ द स्टेट्स और हेड ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, उनके द्वारा किया जाता है। यानी कि इस मायने में जो सर्वे सर्वा हैं वो राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के स्पीकर है, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता इसकी ये होती है कि ये समितियां जो भी काम करेंगी वो प्रधानमंत्री के निर्देश पर नहीं करेंगी, राष्ट्रपति के निर्देश पर नहीं करेंगी, जो भी काम करेंगी वो स्पीकर या सभापति, चेयरमैन, उसके निर्देश पर काम करेंगी, पार्लियामेंट्री कमेटी। ये उसका दूसरा करैक्टर होता है फ्रेंड्स। तीसरा करैक्टर क्या होता है? तीसरा जो करैक्टर है कि ये जो भी इनकी अपनी रिपोर्ट होगी, जो भी काम इनको दिया जाता है, इस पर वो अपना रिपोर्ट तैयार करती हैं, और जो भी इनका रिपोर्ट होगा या इनका अपना प्रतिवेदन ही होगा वो पार्लियामेंट को देंगी और लोकसभा अध्यक्ष। पार्लियामेंट को देने का क्या मतलब है? लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति को। और चौथा और आखिरी जो इनकी विशेष, चौथी और आखिरी विशेषता है, जो लक्षण है दोस्तों, वो ये है कि इनके अपने सचिवालय भी होते हैं, छोटे छोटे सचिवालय होते हैं, क्योंकि इनको काम करना पड़ता है काफी, तो उसकी व्यवस्था लोकसभा राज्यसभा सचिवालय करता है। तो इनफैक्ट अगर सच देखें तो आप इस तीसरे पॉइंट को गायब भी कर सकते हैं, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, तो फंक्शन के ऊपर है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चरित्र है इनके, वो तीन है, और इन तीनों में एक ही बात रिफ्लेक्ट हो रही है, आपने ध्यान दिया होगा, वो ये है कि ये पूरी तरह से लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के अध्यक्ष के कंट्रोल में है, पूरी तरह से उन्हीं पर आधारित हैं। ये है मित्रों पार्लियामेंट्री कमेटी के चरित्र के लक्षण के बारे में मैंने आपको बताया, ताकि अगर प्री में कहीं पूछा जाए तो आप उसे समझ सके। अब मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, कि ये जो समितियां हैं पार्लियामेंट में, वो दो तरह की होती हैं, एक स्थायी समिति होती है और एक तदर्थ समिति होती है। स्थायी समिति का मतलब है कि वो परमानेंट कमेटी है, और तदर्थ समिति का मतलब एडहॉक कमेटी, जब कुछ काम पड़ा तो कमेटी बना दी गई और जब उसका काम पूरा हो गया तो उसको खत्म कर दिया गया। लेकिन जो परमानेंट कमेटियां होती हैं वो लगातार बनी रहती हैं, एक का टर्म पूरा हुआ इमीडिएट तुरंत दूसरी कमेटी आ जाएगी, बन जाएगी, तीसरी बन जाएगी। अब जैसे पब्लिक अकाउंट कमेटी, तो जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है ये स्थायी समिति है, परमानेंट कमेटी है, राइट। अब मैं थोड़ा सा पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में अब आपको मैं थोड़ी सी बातें बताना चाहूंगा पॉइंट वाइज। दोस्तों ये पब्लिक अकाउंट कमेटी, इनफैक्ट थोड़े से मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो कमेटीज हैं ये आखिर में बनाई क्यों जाती हैं। देखिए होता क्या है कि हम सब सामान्य तौर पर यही सोचते हैं कि लोकतंत्र जो है तो लोकतंत्र का मतलब है वोट देना, हमने एमएलए और एमपी चुन दिए, वो जाते हैं लोकसभा और विधानसभाओं में बैठते हैं, कानून बनाते हैं, बात खत्म हो जाती है। हम और चीजों को नहीं देख पाते जो उनके अंदर होती रहती है। फ्रेंड्स, जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन करके जाते हैं, ऐसा नहीं कि उनका काम है सिर्फ कि जब संसद का सत्र चल रहा हो तो वहां बैठे, बहस में भाग लिया और इसके बाद जब सत्र खत्म हो गया तो अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में आ गए, ऐसा नहीं होता है। वो जो संसद जो काम करती है वो वहां तो बहस होती, लोकसभा राज्यसभा में तो सिर्फ बहस होती, जो काम होता है वो सब के सब समितियां ही करती हैं। और आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कितनी सारी समितियां होती हैं, मतलब मुख्य मुख्य समितियां तो आपको मालूम हो सकती हैं, जिसमें कि अभी पार्लियामेंट्री अकाउंट कमेटी भी है, लेकिन और न जाने कितनी समितियां होती हैं, और ये मान करके चले कि जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो किसी न किसी समिति के सदस्य होते ही होते हैं, और वो समितियां रेगुलर बेसिस पर काम करती रहती है, चाहे वो देश में रहें, चाहे वो फॉरेन विजिट में जाएं, चाहे वो रिपोर्ट तैयार करती रहे, जांच पड़ताल होती रहे, बहस होती रहे, इनकी बैठकें होती रहे। तो अब आपको पता शायद थोड़ा सा अनुमान लगा होगा कि नहीं नहीं केवल चुनाव जीत करके चले गए और बहस में भाग ले रहे हैं, यही इनका काम नहीं है। इनफैक्ट सच पूछिए तो पार्लियामेंट जो काम करती है इन समितियों के जरिए ही करती है, ये आपके दिमाग में दर्ज होनी चाहिए, तब आप इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम को सही तरीके से समझ पाएंगे। तो मित्रों अब मैं पार्लियामेंट्री अकाउंट कमेटी पर आता हूं, थोड़ी सी बात आपसे इसके बारे में करनी है, अदरवाइज किताबों में ये बातें हैं वो आप पढ़ लेंगे, लेकिन जो समझाने की बात थी स्पेशली वो मैंने आपको बताई है। देखिए जो पब्लिक का मतलब है यहां लोक से, जिसको हम हिंदी में लोक लेखा समिति भी कहते हैं, तो यहां पब्लिक का मतलब है जनता, अकाउंट जनता का जो पैसा है, जनता का पैसा किसका है, सरकार का पैसा है। तो जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है उसका काम ये देखना है कि जो जनता का पैसा है यानी कि सरकार का पैसा है, तो वो सरकार का पैसा खर्च किया गया है, खर्च कैसे किया गया। आपको मालूम है कि सरकार का एक भी पैसा बिना पार्लियामेंट की स्वीकृति के खर्च नहीं किया जा सकता, पार्लियामेंट की स्वीकृति मिली तब सरकार ने उसको खर्च किया। अब आप देखिए कि अब वो देखती है कि पार्लियामेंट ने जितना पैसा जिसके लिए खर्च करने को दिया था वह पैसा उसी तरीके से खर्च हुआ है या नहीं हुआ है। देखा मैं लोक लेखा उसका फंड है, उसका अकाउंट है, उस अकाउंट की देखरेख करने वाला यह है समिति। अब आपको यह लगेगा कि जब आप एक चैप्टर और पढ़ेंगे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का, तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का भी यही काम है, सरकारी खातों की समीक्षा का ऑडिट करना, यही कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, वो भी यही देखता है कि सरकार ने जो पैसा खर्च किया है वो सही प्रक्रिया के तहत हुआ है कि नहीं, सही तरीके से खर्च हुआ है कि नहीं, और उस पर फिर अपनी रिपोर्ट बनाती है। तो दोनों एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन यहां आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि नहीं दोनों एक ही काम नहीं कर रहे हैं। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल तो बहुत बड़ा काम कर रहा है, उसका तो बहुत बड़ी टीम है, पूरे देश में वो लोग फैले हुए हैं, और सभी सरकार, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उनके खातों की वो बकायदे जांच करती है और उस पर रिपोर्ट तैयार करती है। जो पीएसी है फ्रेंड्स, पब्लिक अकाउंट कमेटी, उसका काम है कि ये जो सीएजी है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, ये अपनी रिपोर्ट पीएसी को देती है और पीएसी फिर उस रिपोर्ट की जांच करता है। मतलब कि सीएजी और पार्लियामेंट के बीच में एक पब्लिक अकाउंट कमेटी जैसी संस्था है जो सीएजी की रिपोर्ट को देखता है, जांच करता है, समझने की कोशिश करता है। ये तो आप देखेंगे कि सीएजी की जो रिपोर्ट है वो तो एक संस्था द्वारा तैयार की गई है, बहुत पावरफुल संस्था के द्वारा, अब वो पार्लियामेंट के पास जा रही है। तो पार्लियामेंट के पास जाने से पहले पार्लियामेंट की ही एक कमेटी है, और ये पार्लियामेंट की ही एक कमेटी है जो इसकी जांच कर रही है। और जो धन का मामला होता है फ्रेंड्स, वो बहुत सेंसिटिव होता है, ओवर सेंसिटिव होता है, इसलिए इस बारे में बहुत सतर्कता रखी जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि अब सीएजी ने तो रिपोर्ट तैयार कर दी, अब उस रिपोर्ट पर जो रिपोर्ट तैयार कर रही है सीएजी वो कितनी विश्वसनीय है, उसको कैसे विश्वसनीय समझा जाए। सत्तारूढ़ दल, अगर मान लीजिए कि कमेटी में सबके सब सत्तारूढ़ पार्टी के ही मेंबर हुए, तो अपने फेवर में चीजें बदल तो नहीं सकते, लेकिन अपने फेवर में चीजें तैयार कर लेंगे, या कह लीजिए कि उस तरह से स्टेप नहीं उठाएंगे जो हार्ड स्टेप उठाए जाने चाहिए, तो जनता का विश्वास कैसे होगा। तो अब आप देखिए कि पीएससी में क्या किया गया है, तो पीएससी में टोटल कुल मिलाकर 22 सदस्य होते हैं, दो चीजें ध्यान दीजिएगा, 22 सदस्य होते हैं, 22, इन 22 में 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं, 15, 7, 22 पूरे हो गए, क्योंकि राज्यसभा की संख्या भी तो आधी है ना, 250 है, मतलब 250 है तो समझ ली, यहां 540 है तो लगभग आधे हैं, तो उसी अनुपात में राज्यसभा के सदस्य हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि 1967 के बाद से, 1967 ऑनवर्ड्स, इसके जो चेयरमैन होते हैं, पीएससी के जो चेयरमैन होते हैं, वो विपक्ष का नेता होता है, विपक्षी दल से होता है। इससे पहले जो सत्तारूढ़ पार्टी है उन्हीं का ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसका अध्यक्ष हो जाता था। ठीक वैसे जैसे कि लोकसभा के स्पीकर, सत्तारूढ़ पार्टी के होते हैं, उसी तरह से पीएससी के भी अध्यक्ष पहले सत्तारूढ़ पार्टी के होते थे, लेकिन 67 से इसको बदल दिया गया। अब हमेशा विरोधी दल का कोई व्यक्ति उसका अध्यक्ष होगा और वो खुद में अपने में चुनाव करते हैं। अब आप देखिए कि अगर विरोधी दल का नेता उसका अध्यक्ष है और जो कंपोजिशन है राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों का, उसमें कोशिश की जाती है कि अनुपात के अनुसार सभी दलों के सदस्य आ जाएं। उसमें ये नहीं कि फिर दो ही तीन दल के सदस्य भरे हुए हैं, नो, उनके सदस्य संख्या जितनी है लोकसभा राज्यसभा में उसका एक फार्मूला है, उसके अनुसार उसमें मेंबर्स लिए जाते हैं। अब ये जो रिपोर्ट तैयार कर रही है, ये सर्वदलीय रिपोर्ट जैसी हो गई, तो इस पर फिर पब्लिक का भरोसा बढ़ता है और यही डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी ताकत भी है। मित्रों, अब मैं दो तीन पॉइंट्स आपको देता हूं, खासकर वे पॉइंट्स जो इसके कार्य को लेकर हैं, केवल आपके दिमाग में रहने चाहिए, इसको फिर आप इनलार्ज करिएगा कि पीएससी और अधिकारों की मांग करती है। क्योंकि पहली बात तो यह कि अगर पीएससी किसी को कहती है कि उसको समन जारी किया कि तुम्हें हमारे सामने उपस्थित होना पड़ेगा, तो कई बार ऐसा होता है कि लोग उपस्थित नहीं हो पाते। तो पीएससी की मांग है कि अगर ऐसा होता है तो हमें अधिकार होना चाहिए कि हम उसे सजा दे सके, पहली बात। दूसरी मांग वो ये कहती है फ्रेंड्स की, और करीब ये नई मांग ही है जो पिछले 1.5-2 साल से काफी तेजी से बढ़ रही है, कि जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है उसे संसद के प्रति जवाबदेह बनाया जाए, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल टू वर्ड्स द पार्लियामेंट, संसद के प्रति वो जवाबदेह हो। अभी वो संसद के प्रति जवाबदेह नहीं है, इससे क्या होगा कि वो बहुत सतर्क हो जाएगा, उसकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो सीएजी उससे पावरफुल हो जाएगा। तीसरी वो उनकी मांग ये भी है फ्रेंड्स कि जब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का अपॉइंटमेंट किया जाता है तो अपॉइंटमेंट करते समय सीएजी की भी राय ली जाए, उनसे भी पूछा जाए, क्योंकि वो सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट को देखते हैं, तो बेहतर है कि उसको भी पीएससी को भी उसमें शामिल किया जाए। ये उनकी मांगे हैं, लेकिन ये तो आगे की बात है कि क्या होता है। तो दोस्तों, ये मैंने थोड़ी सी बातें आपको कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में बताई, और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि मैंने आपको पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में थोड़ी सी इनिशियल लेवल की जानकारी दी है। और डेफिनेटली ये ऐसी बेसिक जानकारियां हैं जो एक डेमोक्रेसी को समझने में और पार्लियामेंट्री कमेटीज के चरित्र और फंक्शन को समझने में आपकी मदद करेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।